आयु देहरादून पहुंच चुकी थी। वो ज्ञान जी के साथ ओबेरॉय फैमिली के फार्म हाउस में नहीं रहना चाहती थी, इसलिए ज्ञान जी की परमिशन लेने के बाद आयु आरिशा के साथ देहरादून की एक 7-स्टार होटल में पहुंची। उसने वहां उन दोनों के लिए लग्जरियस स्वीट बुक किया था जो होटल के टॉप फ्लोर पर था। उस लग्जरियस स्वीट की एक खास बात थी कि एक फ्लोर पर सिर्फ दो ही स्वीट बनाए गए थे और वो किसी हाई क्लास अपार्टमेंट की तरह दिखते थे, एक बड़े से कमरे के अंदर घर जैसी पूरी सुविधाएं। आयु आरिशा के साथ अपने स्वीट पर पहुंची तो उसे देखने के बाद आरिशा ने हैरानी से आंखें बड़ी करके कहा,
हाउ वाओ मॉम, इट्स सो ब्यूटीफुल, ये बिल्कुल एली के घर जैसा लग रहा है।
एली आरिशा की फ्रेंड का नाम था। आरिशा के एक्सप्रेशंस देखकर आयु के फेस पर हल्की स्माइल आ गई। वो वहां लगे बेड पर बैठी और आरिशा को अपनी गोद में बैठा लिया। आयु इंडिया आने के बाद कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो रही थी। उसने आरिशा की गाल पर किस किया और फिर उसका चेहरा पकड़कर कहा, प्रॉमिस करो कि आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी।
आप ये बातें बार बार क्यों कहती रहती हो? मैं आपको छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ?
आरिशा ने मासूमियत से जवाब दिया। उसने आरिशा के चेहरे की तरफ देखा जो परेशान लग रही थी। उसे देखते ही आरिशा ने आयु को कस के हक कर लिया और फिर बोली, मुझे आपकी कही हुई हर एक बात याद है मॉम, कि आपसे दूर नहीं जाना है। जब भी आप परेशान हो, गुस्से में हो या रो रही हो तो आपको आकर हक करना है और आई लव यू बोलना है। सो आई लव यू सो मच मॉम। उसकी बातें सुनकर आयु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। आरिशा जब भी अपनी उम्र से मैच्योर बिहेव करती थी तो आयु को काफ़ी प्राउड फील होता था। उसने आरिशा से अलग होकर कहा, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मॉम का आपके अलावा और कोई नहीं है, बस इसीलिए कहती हूँ कि मुझे छोड़कर कहीं मत जाना।
ऐसे कैसे कोई नहीं है? आप दादू को भूल रही हो। आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होते रहते हैं लेकिन दादू आपसे बहुत प्यार करते हैं,
आरिशा ने काफ़ी सीरियस चेहरे के साथ कहा। उसकी बातें सुनकर आयु को अपना बचपन याद आ गया। जब तारा और जयजी ने आयु को ज्ञान जी के पास छोड़ा था तब वो भी लगभग इतनी ही उम्र की थी और अपने मम्मी पापा से नाराज होने के कारण ज्ञान जी से यही कहती थी कि आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। आयु ने आरिशा की बात पर हामी भरते हुए कहा, अच्छा ठीक है दादी अम्मा, मेरा आपके और दादू के अलावा और कोई नहीं है। अब जाकर फ्रेश होकर चेंज कर लो। देखो यहाँ का बाथरूम कितना बड़ा है, तुम चाहो तो बालकनी से बाहर की तरफ भी देख सकती हो, बस कोई शरारत मत करना। आयु की कहते ही आरिशा तुरंत वहां से चली गई और पूरे स्वीट को एक्सप्लोर करने लगी। आयु अभी भी आरिशा की बातों के बारे में सोच रही थी। उसने ज्ञान जी को अकेले फार्म हाउस पर रहने के लिए छोड़ दिया था, जबकि उसके मुश्किल वक्त में उन्होंने ही हमेशा उसे संभाला था। आयु ने तुरंत ज्ञान जी को कॉल किया। ज्ञान जी की कॉल रिसीव करते ही आयु झट से बोली, दादू आई एम रियली सॉरी।
तुम और मुझे सॉरी बोल रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आरिशा से बात कराओ, कहीं रस्ते में कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया तुम्हारा?
ज्ञान जी ने हैरानी से कहा। दादू प्लीज एम्बैरिश मत कीजिए, मुझे आपको अकेला फार्म हाउस पर नहीं छोड़ना चाहिए था, आप चाहो तो हमारे साथ यहाँ आकर रह सकते हो, आयु ने जवाब दिया। ज्ञान जी ने हंसकर कहा, नो थैंक्स, मैं अपने घर पर काफी खुश हूँ, वैसे भी मुझे ये जगह हमेशा से सुकून देती है। एक वक्त ऐसा था जब तुम्हें भी ये जगह सुकून देती थी, लेकिन पता नहीं अब तुम्हें क्या हो गया है।
क्योंकि मेरा सुकून खो गया है दादू, अचानक आयु के मुँह से निकला। फिर वो कुछ पल रुक कर बोली, दादू थैंक यू सो मच हमेशा मेरा साथ देने के लिए, मैं अपना वादा नहीं निभा पाई और मुंबई आने के बाद आपसे वापस मिलने नहीं आई, जबकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। याद है जब मैं आरू की उम्र की थी तब मैंने आपसे कहा था कि मेरा आपके अलावा कोई नहीं है, तब आपने भी यही कहा था कि आपके अलावा मेरा भी कोई नहीं है, और अचानक तुम पुरानी बातें क्यों करने लग गई? इंडिया आने के बाद तुम कुछ ज्यादा ही इमोशनल नहीं हो रही?
ज्ञान जी ने सिर हिलाकर कहा। मैं इमोशनल नहीं हो रही, बस आपको बता रही हूँ कि मैं आपसे अब भी उतना ही प्यार करती हूँ। हाँ थोड़े टाइम के लिए मुझे कोई मिल गया था तो ऐसा लगा जैसे जिंदगी पूरी हो गई हो, लेकिन ये थोड़े टाइम की खुशियाँ बहुत दर्द देती हैं। मुझे बस इतना ही कहना है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और अब आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी, आयु ने सख्ती से जवाब दिया। वो बातों ही बातों में ज्ञान जी से कभी दूर ना जाने का प्रॉमिस कर रही थी। ज्ञान जी ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और गंभीर आवाज में कहा, तुम्हारी वो थोड़े टाइम की खुशियाँ आरफ खुराना था ना, वो तुम्हारी थोड़े टाइम की खुशियाँ नहीं थी, उसने तुम्हें जिंदगी भर की खुशी दी है, वो उसी की बेटी है जिसके सहारे अब तुम जी रही हो। रही बात हमेशा मेरे साथ रहने की, तो मैं नहीं चाहता कि अब तुम हमेशा मेरे साथ रहो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अकेले जिंदगी बिताना बहुत मुश्किल होता है। तुम्हारी दादी की मौत बहुत कम उम्र में हो गई थी और मैं जानता हूँ अकेले जिंदगी बिताना कितना मुश्किल होता है। चलो अब फोन रखो वरना मैं इमोशनल हो जाऊंगा और ये मेरी पर्सनैलिटी पर सूट नहीं करता। ज्ञान जी ने आयु के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और कॉल कट कर दिया। आयु ज्ञान जी से बात करके हटी ही थी कि तभी आरिशा दौड़कर उसके पास आई और उसके गले लगकर बोली, थैंक यू सो मच मॉम मुझे इंडिया लाने के लिए, मुझे ये जगह बहुत पसंद आई है, आप चाहो तो हमेशा के लिए यहाँ रह सकती हो।
नहीं आरू, हम यहाँ सिर्फ एक हफ्ते के लिए हैं, आयु ने जवाब दिया। ठीक है, फिर हम घूमने बाहर कब जाएंगे? आरिशा ने अपनी कमर पर हाथ रखकर पूछा। हम इवनिंग में घूमने के लिए निकलेंगे, तब तक तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ मंगा देती हूँ, आयु ने जवाब दिया। आरिशा को वहीं पर छोड़कर आयु फ्रेश होने के लिए चली गई थी। आने के बाद उसने उन दोनों के लिए खाना ऑर्डर किया और फिर कुछ देर के लिए सो गई। शाम के लगभग 5 बजे के करीब आयु ने ज्ञान जी को कॉल करके बाहर आने को बोल दिया था। वहीं वो दोनों भी वहां से निकल रही थी। आयु ने आरिशा को तैयार कर दिया था। उसने ब्लू डेनिम शॉर्ट फ्रॉक पहना था, साथ में मैचिंग शूज और बैग के साथ वो काफी क्यूट लग रही थी। आरिशा की जिद करने पर आयु ने भी उसी की तरह ब्लू डेनिम शॉर्ट फ्रॉक पहना था और साथ में उसी से मैच करते हुए शूज। तैयार होने के बाद वो दोनों एक जैसी लग रही थी तो आरिशा ने उसे नीचे झुकने का इशारा किया। आयु के नीचे झुकते ही उसने फिर से उसकी गाल खींचते हुए कहा, यू आर लुकिंग लाइक माई एल्डर सिस्टर बट आई रिमेम्बर यू आर माई मॉम। उसकी बातें सुनकर आयु के फेस पर स्माइल आ गई और उसने आरिशा की गाल पर हल्के से किस किया। फिर वो दोनों बाहर होटल के मेन गेट के पास आ गई थी। आयु जल्दबाजी में अपना मोबाइल लाना भूल गई थी, इसलिए उसने आरिशा से कहा, यहाँ से हटाना मत, मैं बस 2 मिनट में आ जाऊंगी, गेट से बाहर मत निकालना। आरिशा को सब समझाने के बाद आयु ने सिक्योरिटी गार्ड को उसका ध्यान रखने के लिए बोल दिया और फिर वो दौड़कर ऊपर लिफ्ट में गई। आरिशा वहां खड़ी हुई थी तभी एक गाड़ी तेज गति से चलकर आई। बारिश होने की वजह से वहां थोड़ा पानी फैला हुआ था और गाड़ी से कीचड़ उछलकर आरिशा के पूरे कपड़े और मुंह पर आ गया था। इस वक्त आरिशा के चेहरे पर गहरे गुस्से के भाव थे।
आयु अपना मोबाइल होटल रूम में ही भूल गई थी, इसीलिए वो अपना मोबाइल लेने के लिए वापस ऊपर गई हुई थी। उसने आरिशा को नीचे छोड़ा हुआ था, साथ ही वहां के सिक्योरिटी गार्ड को उस पर ध्यान रखने के लिए कहा था। आरिशा वहां खड़ी आयु के आने का वेट कर रही थी तभी एक गाड़ी उस तरफ आई। बारिश होने की वजह से वहां थोड़ा पानी इकट्ठा हो रहा था और वो आरिशा के कपड़ों और मुंह पर आ गया था। इस वक्त उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। गाड़ी होटल के आगे रुकी, आरिशा उसके पास गई और उसकी विंडो पर नॉक किया। गाड़ी की विंडो डाउन हुई, सामने ड्राइविंग सीट पर आरव बैठा हुआ था। उसने आरिशा की तरफ देखकर अपने कंधे उचकाए। तुम गलत जगह पर खड़ी थी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आरव ने आरिशा की तरफ देखकर बेपरवाही से कहा। उसने देख लिया था कि आरिशा के कपड़े और मुंह पर कीचड़ लगा हुआ था। एक्सक्यूज मी मिस्टर, एक तो आप गलती कर रहे हो, ऊपर से गलती मानने के बजाय मुझ पर ही एलिगेशन लगा रहे हो। अभी के अभी सॉरी बोलिए और मामले को खत्म कीजिए, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आरिशा ने गुस्से में जवाब दिया। वो आरव को इस तरह देख रही थी मानो आंखों ही आंखों में उसकी जान ले लेगी। आरव गाड़ी से बाहर आया और उसने आरिशा की तरफ देखकर कहा, आजकल के बच्चे कुछ ज्यादा ही तेज नहीं हो रहे हैं, मैंने कह दिया गलती तुम्हारी थी क्योंकि तुम बीच में खड़ी थी और मैं तुम्हें सॉरी नहीं बोलने वाला। और मैं तुम्हें सॉरी क्यों बोलूं, वो भी इतनी छोटी सी बच्ची को, तुम्हारे पेरेंट्स की गलती है कि उन्होंने तुम्हें यहाँ पर छोड़ा। अच्छा अब इसमें मेरे पेरेंट्स कहाँ से आ गए, ऐसे तो आपके भी पेरेंट्स की गलती है जो उन्होंने आपको गाड़ी दे दी जबकि आपको ठीक से ड्राइव करनी भी नहीं आती, आरिशा ने जवाब दिया। उसके और आरव के बीच कड़ी टक्कर चली हुई थी। वहीं आर्या गाड़ी में था, उसने बाहर की तरफ झांक कर देखा तो आरव एक छोटी सी बच्ची के साथ बहस कर रहा था। आर्या ने अपना सिर पकड़कर कहा, पता नहीं क्यों डैड बच्चों के साथ बच्चों की तरह ही बहस करते हैं, बेचारी के सारे कपड़े खराब कर दिए, ऊपर से सॉरी भी नहीं बोल रहे। आरिशा ने आरव को ड्राइव न करने आने की बात कही तो वो उसकी तरफ घूर कर देख रहा था। उसने आरिशा से जवाब में कहा, मुझे तुम जैसे बदतमीज बच्चों के मुंह ही नहीं लगना और मैं तुम्हें सॉरी नहीं बोलने वाला, मैस हुएवर यू आर, जाओ जाकर चेंज कर लो और अपनी मॉम या डैड से बोलना कि आगे से आपको इस तरह बीच रोड पर खड़ा करके अपने काम में ना लगे। आरिशा अपने कमर पर हाथ रखकर आरव को गुस्से में देख रही थी, लेकिन आरव ने उसको वहीं पर छोड़ा और वापस गाड़ी में आकर बैठ गया था। उसने गाड़ी अंदर की तरफ पार्क की और फिर आर्या को गोद में उठाकर होटल के अंदर चला गया। आरिशा को आरव पर बहुत गुस्सा आ रहा था, वो उसकी गाड़ी के पास गई और उसे घूर कर देखने लगी। लिसन मिस कार, आई नो यू आर इनोसेंट पर तुम्हारा ओनर एक बहुत ही बदतमीज इंसान है और उसकी सजा तुम्हें मिलने वाली है, बोलते हुए आरिशा ने अपने बैग में देखा, उसे एक नेल कटर मिल गया था। आरिशा ने नेल कटर बाहर निकाला और उसके नाइफ से गाड़ी पर स्क्रैच लगाने शुरू कर दिए थे। उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था और उसका गुस्सा गाड़ी पर निकल रहा था। बहुत सारे स्क्रैच लगाने के बाद आरिशा ने उसे देखकर कहा, ऐसे सीधे नहीं जा सकती, उन्हें पता चलना चाहिए कि उन्हें किस गलती की सजा मिली है, बोलते हुए आरिशा ने नीचे फ्रॉम मिसे खुराना लिख दिया था। गाड़ी को नुकसान पहुंचाने के बाद आरिशा वापस अपनी जगह पर आकर खड़ी हो गई। तभी आयु दौड़कर उसके पास आई। उसने देखा आरिशा के कपड़े और मुंह पर कीचड़ लगा हुआ था। उसे देखकर आयु ने हैरानी से पूछा, अब ये किसने किया, तुम यहाँ चुपचाप खड़ी हो, कोई तुम्हारे कपड़े खराब करके चला गया और तुमने उसे कुछ कहा नहीं? मैंने उसे सॉरी बोलने के लिए कहा था, लेकिन वो एक बहुत ही बदतमीज इंसान था मॉम। कोई बात नहीं, आरिशा खुराना को सॉरी बुलवाना अच्छे से आता है, मैंने उसकी गाड़ी खराब कर दी और इस बात के लिए आप मुझे डांटेंगी नहीं, आरिशा ने सीधे सीधे बता दिया। बहुत अच्छा किया, वो यही डिजर्व करता है, आयु ने थम्स अप करके कहा।
वो आरिशा को गोद में उठाकर अंदर लेकर जा रही थी, तभी उसे याद आया कि एक बार उसने भी आरव की गाड़ी खराब कर दी थी। ऊपर जाते हुए आयू ने अपने मन में कहा, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। यहाँ आने के बाद ही सब गड़बड़ शुरू हुई है और मुझे फिर से उसकी याद आने लगी है। पिछली बार मैंने उसकी गाड़ी पर सिर्फ स्क्रैच किया था, इस बार मेरे सामने आने दो उसे, उसकी गाड़ी सहित उसे भी तोड़कर रख दूंगी मैं। आयू वापस अपने स्वीट में आ गई थी और आरिशा को चेंज कराने लगी थी। वहीं आरव आर्या के साथ नीचे रिसेप्शन एरिया में था। आरव रिसेप्शनिस्ट से बात कर रहा था और उसने हल्के गुस्से में कहा, जब मैंने कहा था कि मुझे पूरा फ्लोर बुक करना है, फिर आप मेरे सामने का स्वीट किसी और को कैसे दे सकते हैं? मैं आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करने के लिए तैयार था, मुझे प्राइवेसी चाहिए। सॉरी सर, हमें पता नहीं था, वो जिस वक्त यहाँ आई थी उस वक्त ड्यूटी पर कोई और था और उन्होंने वो स्वीट उन्हें दे दिया। अब हम उनसे खाली भी नहीं करवा सकते, उनके साथ एक छोटी बच्ची है, रिसेप्शनिस्ट ने सॉरी मांगते हुए कहा। छोटी बच्ची है मतलब? और ज्यादा परेशान करेगी, आरव ने सिर हिलाकर कहा। वो रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखकर बोला, मुझे यहाँ नहीं रुकना है। आरव वहां से जाता उससे पहले आर्या ने उसका हाथ पकड़कर कहा, जाने दीजिए ना डैड, बस 1 वीक की ही तो बात है। आर्या की इंसिस्ट करने पर आरव वहां पर रुक गया, हालांकि उसका वहां रुकने का बिल्कुल मन नहीं था। उसने रिसेप्शनिस्ट से चाबी मांगी और ऊपर के फ्लोर पर जाने लगा। किस्मत एक बार फिर खेल रही थी, आरव और आयु एक ही फ्लोर पर आमने सामने के स्वीट पर रुके थे। आरव जब तक ऊपर पहुंचा तब तक आयु आरिशा को लेकर वहां से निकल चुकी थी। अपने कमरे में जाने से पहले आरव ने आयु के स्वीट की तरफ देखकर कहा, हो सके तो इस बच्ची और इस कमरे में रहने वाले इंसानों से दूर रहना, मैनेजर के आने के बाद मैं उन्हें यहाँ से निकलवा दूंगा। कुछ देर उस कमरे को घूरने के बाद आरव अपने स्वीट में चला गया। वहीं आयु ज्ञान जी के साथ घूमने जा चुकी थी।